ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। 19वें लोकतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। देश बनाने में युवाओं का संकल्प और सक्रिय प्रयास आवश्यक है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संघीय संसद का बजट अधिवेशन कल से होने जा रहा है शुरू। निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा सरकारी निर्वाह भत्ता देने की व्यवस्था क्रियान्वयन न होने पर मंत्रालय से संबंधित कॉलेजों के काम रोका जाएगा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल की चेतावनी। और गजा क्षेत्र में हुए इजरायली हवाई आक्रमण में पड़के 39 फिलिस्तीनी की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आज 19वें लोकतंत्र दिवस प्रजातांत्रिक तथा लोकतांत्रिक संघर्ष में अपनी अमूल्य जीवन उत्सर्ग किए शहीदों प्रति श्रद्धांजलि अर्पण लगायत विभिन्न कार्यक्रम कर मनाया गया है। 1982-63 साल के जन आंदोलन से निरंकुश राजतंत्र का अंत करके 2063 बैसाख 11 गते अर्थात आज के ही वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्थापना किया हुआ था। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने 2059 साल के ज्येष्ठ 8 में विघटित संसद का पुनः स्थापना करके खुद देश के कार्यकारी पद से हटने का घोषणा तथा निरंकुशता का पराजय हुए 2063 वैशाख 11 का स्मरण करके लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना व्यक्त करते हुए राजनीतिक दलों के नेतागणों ने देश के समृद्धि के निमित्त सभी को एक होने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश बनाने के लिए युवाओं का संकल्प और सक्रिय प्रयास का आवश्यकता है। आज लोकतंत्र दिवस के अवसर पर नेकपा एमाले द्वारा काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश विभिन्न संक्रमणकालीन अवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था तक आ पहुंची है और अब देश की स्थिति परिवर्तन करने के लिए युवाओं का अग्रणी पहलकदमी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार की आयु के बारे में हुए हल्ला के पीछे नहीं लगकर आगामी निर्वाचन और देश के समृद्धि के लिए दृढ़ होकर लगना चाहिए। मौके पर नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि देश को गतिशील और समृद्ध बनाने के लिए युवाओं का साथ महत्वपूर्ण है। संघीय संसद के दोनों सदनों का बजट अर्थात बरखे अधिवेशन कल से शुरू होने जा रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल से मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आह्वान हुआ है, इसलिए कल दोपहर 1 बजे नए बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में अधिवेशन शुरू होगी। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष के लिए अर्थमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा हर साल का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किए जाने के बाद संघीय संसद का दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को संबोधन करने का व्यवस्था है। बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संसदों का संबोधन की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू में आंदोलनरत शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर विद्यालय वापस लौटने का माहौल बनाने का सरकार के नाम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहकुल सुवेदी की एकल पीठ ने सरकार के नाम के आदेश जारी किया है। अधिवक्ता द्वय श्रवण कुमार चौधरी और माधवराज शर्मा पोखरेल ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को विपक्षी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में रीट निवेदन दर्ज किया था। विद्यालय शिक्षा आयन जारी लगायत मांग सहित शिक्षक आंदोलनरत है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज ने सरकारी शरह निर्वाह भत्ता देने का व्यवस्था क्रियान्वयन नहीं किया तो मंत्रालय से संबंधित कॉलेज के सभी काम रोका जाएगा। मंत्रालय में नेपाल चिकित्सक संघ और आवासीय चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के साथ आज हुए वार्ता में उन्होंने कहा कि निर्वाह भत्ता देने के विषय पर चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णय कर चुकी है और उसमें तर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज को निर्वाह भत्ता 48,000 रूपये देने का निर्णय क्रियान्वयन करना और उसके बाद कॉलेजों के मांग मुताबिक स्नातकोत्तर का सीट और शुल्क बढ़ाने के विषय पर वार्ता किया जा सकता है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंह ने इंजीनियरों से राष्ट्र की आवश्यकता और जनता की मांग के अनुसार विकास एवं निर्माण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। आज ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि निर्माण होने वाली संरचनाओं और विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय राष्ट्र और जनता की आवश्यकताओं को समझकर सकारात्मक परिवर्तन लाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवप्रवर्तन और प्रविधि आधारित योजनाओं को लागू करने से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुराज पंत ने आज मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया कर्मियों से संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री पंत ने कहा कि वे आंदोलनरत शिक्षकों की मांगों को वार्ता के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास करेंगे। मंत्री पंत ने कहा कि उन्हें शिक्षकों की मांगों के बारे में सामान्य जानकारी है, लेकिन मंत्रालय की ओर से अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी लेने के बाद ही आगे के कदमों के बारे में बोलना उचित होगा। उन्होंने कहा, मैं बोलने के बजाय काम करने की स्थिति में आया हूं और यह भी बताया कि उनका पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित होगा। विद्यालय शिक्षा आयन जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से शिक्षक आंदोलनरत है। इससे पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय में आज आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुराज पंत को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेकपा माओवादी केंद्र ने विद्यालय शिक्षा विधेयक को समय पर पारित करने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करने का निर्णय किया है। माओवादी केंद्र के संसदीय दल की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षक लंबे समय से सड़क पर है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को संबोधित करने में गंभीरता नहीं दिखाई है। पार्टी के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए पहल करने का निर्णय किया गया है। सरकार द्वारा आगामी ज्येष्ठ 2 गते से 4 गते तक आयोजित किए जाने वाले सगरमाथा संवाद की पूर्व तैयारी के रूप में आयोजित हिमाली संवाद का समापन 13 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी के साथ हुआ। इसी बैसाख 9 और 10 गते को जुमला के खलंगा में संपन्न हुए हिमाली संवाद में कर्णाली प्रदेश के बच्चों और सीमांत समुदायों की आवाज को मजबूती से उठाने के विषय पर विभिन्न सुझाव दिए गए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में 39 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस हमले के बाद से हिंसा और तनाव में और वृद्धि हुई है। यह घटना इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच चल रहे दशकों पुराने संघर्ष का हिस्सा है। हमला गजा पट्टी के एक आवासीय इलाके में हुआ, जहां इजरायली वायुसेना ने कथित तौर पर हमास के लक्ष्यों को निशाना बनाया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 39 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 100 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उनका लक्ष्य हमास के आतंकवादी ठिकाने और उनके हथियार डिपो थे, लेकिन नागरिकों के हताहत होने पर खेद जताया। हमास की प्रतिक्रिया, हमास ने इस हमले की निंदा की है और इसे युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूएन ने हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें लोकतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। देश बनाने में युवाओं का संकल्प और सक्रिय प्रयास आवश्यक है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संघीय संसद का बजट अधिवेशन कल से होने जा रहा है शुरू। निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा सरकारी निर्वाह भत्ता देने की व्यवस्था क्रियान्वयन न होने पर मंत्रालय से संबंधित कॉलेजों के काम रोका जाएगा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल की चेतावनी। और गजा क्षेत्र में हुए इजरायली हवाई आक्रमण में पड़के 39 पैलेस्टीनी की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।